एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक की बात करने वाले हैं, 20वीं सदी के, जिन्होंने विश्लेषणात्मक दर्शन पर गहरी छाप छोड़ी, सॉल एरन क्रिपके।
नमस्कार। हाँ, सॉल क्रिपके अमेरिकी तर्कशास्त्री और दार्शनिक, और आप सही कह रही हैं, उनका काम आज भी मतलब बहुत प्रासंगिक है।
तो ये इतने अहम क्यों हैं? मतलब क्या खास था उनके काम में?
देखिए, क्रिपके इसलिए इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने भाषा, तर्क, यहाँ तक कि वास्तविकता यानी मेटाफिजिक्स के बारे में हमारी जो समझ थी ना, उसको बिल्कुल बुनियादी स्तर पर बदल दिया।
अच्छा,
हाँ, उनके विचार आज भी जैसे दर्शन शास्त्र के कोर्स में एक तरह से फाउंडेशन माने जाते हैं।
तो आज हम क्या करने वाले हैं, किन स्रोतों पर बात करेंगे? हम कुछ लेखों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर उनके जीवन को देखेंगे, उनके जो मुख्य विचार थे और दर्शन पर उनका क्या असर रहा, उसे समझने की कोशिश करेंगे।
बढ़िया। तो हमारा लक्ष्य है क्रिटके के उन खास विचारों को समझना जिन्होंने नामों के मतलब, जरूरत, पहचान, इन सब पर पुरानी सोच को हिला दिया है ना, और कैसे नए रास्ते खोले दर्शन के लिए।
बिल्कुल, यही कोशिश रहेगी।
तो चलिए शुरुआत करते हैं उस समय से, उस माहौल से जिसमें क्रिपके सोच रहे थे। वो दौर कैसा था?
हाँ जरूर, क्रिपके का काम उभर कर आया 20वीं सदी के मध्य में। उस समय एंग्लो अमेरिकी दर्शन में मोटे तौर पर दो बड़े खेमे थे।
कौन कौन से?
एक तो था तार्किक प्रत्यक्षवाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, वियना सर्कल वाला। इनका मानना था कि भाई वही बात मतलब की है जिसे वैज्ञानिक तौर पर परखा जा सके।
अच्छा, यानी जो वैज्ञानिक नहीं वो बेकार, कुछ ऐसे?
हाँ, कम उबेश यही। और दूसरी धारा थी सामान्य भाषा दर्शन, ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलॉसफी। इसमें विटगेंस्टाइन, ऑस्टिन जैसे बड़े नाम थे।
हाँ, इनका मानना था कि दर्शन की समस्याएं भाषा के गालमेल से पैदा होती हैं, है ना?
बिल्कुल सही, ये कहते थे भाषा को ठीक से समझो, समस्याएं सुलझ जाएंगी। अब मजे की बात यह है कि ये दोनों ही धाराएं जो थीं, वो पारंपरिक मेटाफिजिक्स को लेके बड़ी शक्की थीं।
मेटाफिजिक्स यानी वास्तविकता, अस्तित्व जैसे बड़े सवाल।
यसे, समय क्या है, मन क्या है।
हाँ, वही तत्वमीमांसा।
ये दोनों धाराएं मेटाफिजिक्स के सवालों को ज्यादातर या तो भाषा की उलझन मानती थीं या फिर निरर्थक समझती थीं। मतलब इन पर बात करना ही बेकार है।
हाँ,
और इसी माहौल में क्रिपके का काम आया। एक तरह से उन्होंने मेटाफिजिक्स को फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने दिखाया कि नहीं भाई, ये सवाल गंभीर हैं और इन पर तर्क से बात हो सकती है।
तो ये एक बड़ा बदलाव था उस समय। और कौन थे उनके समकालीन विचारक?
उस दौर में W.B.O. क्विन थे, जिनकी विश्लेषणात्मक संश्लेषणात्मक भेद की आलोचना ने भी नई सोच के लिए जगह बनाई। डेविड लुइस, हिलेरी पटनम भी थे।
और क्रिपके सीधे तौर पर किन विचारों को चुनौती दे रहे थे? उनके बौद्धिक प्रतिद्वंद्वी कौन थे?
उनका मुख्य निशाना थे गॉटलोब फ्रेगे और बर्टन रसल, खासतौर पर नामों को लेकर उनका जो विवरणात्मक सिद्धांत था।
अच्छा, ये सिद्धांत क्या कहता था?
ये कहता था कि किसी नाम का मतलब, जैसे अरस्तु, उससे जुड़े विवरणों का एक सेट होता है, जैसे सिकंदर महान का शिक्षक या प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध छात्र।
क्रिपके ने कहा ये गलत है और उन्होंने इस पर जबरदस्त हमला किया। इस पूरे माहौल पर आप देखें तो शीत युद्ध का भी असर था, विज्ञान पर जोर बढ़ रहा था, कंप्यूटर साइंस शुरू हो रहा था, तर्क में दिलचस्पी बढ़ रही थी।
ये संदर्भ समझना वाकई जरूरी था। अब जरा उनके बचपन और शुरुआती जीवन पर आते हैं। मैंने सुना है वो बचपन से ही असाधारण थे।
असाधारण से भी ज्यादा, मतलब प्रोडिजी शब्द उनके लिए ही बना था शायद। न्यूयॉर्क में एक यहूदी परिवार में जन्म हुआ, पिता रबी थे, शायद विश्लेषण की वो पैनी धार वहीं से मिली हो।
तो क्या खास था बचपन में? आप अंदाजा लगाइए, 6 साल की उम्र में खुद से प्राचीन हिब्रू सीख ली।
क्या कह रहे हैं, 6 साल में? ये तो यकीन करना मुश्किल है।
हाँ, और 9 साल के होते होते शेक्सपियर की सारी रचनाएं पढ़ डाली थीं, और टीनेज में ही गणित और दर्शन के मुश्किल विषयों पर उनकी पकड़ गजब की थी।
और उनका वो पहला शोध पत्र जो उन्होंने हाई स्कूल में लिखा था मॉडल लॉजिक पे।
बिल्कुल, मॉडल लॉजिक में एक पूर्णता प्रमेय, मॉडल लॉजिक होता है संभावना और आवश्यकता का तर्क। ये पेपर उन्होंने हाई स्कूल में लिखा और 18 की उम्र में छप गया। इसने फील्ड में हंगामा मचा दिया।
बाप रे।
इसी में उन्होंने क्रिपके सिमेंटिक्स, या जिसे संभावित दुनिया सिमेंटिक्स कहते हैं, उसकी नींव रखी। ये आज भी मॉडल लॉजिक समझने का स्टैंडर्ड तरीका है। बाद में उन्होंने हार्वर्ड से गणित में डिग्री ली।
उनकी माँ से जुड़ा एक किस्सा भी काफी मशहूर है शायद।
हाँ हाँ वो वाला, कहते हैं किसी ने उनकी माँ से तारीफ की कि आपका बेटा तो जीनियस है, तो उनकी माँ ने कहा हाँ वो तो ठीक है पर असली जीनियस तो मेरा दूसरा बेटा है।
अच्छा, ये तो कमाल है। शायद परिवार में बौद्धिकता और विनम्रता दोनों थीं।
शायद यही बात हो।
जाहिर है इतने तेज दिमाग से जो विचार निकले होंगे वो भी बहुत गहरे और शायद क्रांतिकारी होंगे। तो अब आते हैं उनके मुख्य विचारों पर। आपने फ्रेगे और रसेल के विवरणात्मक सिद्धांत का जिक्र किया था, क्रिपके ने उसे कैसे नकारा?
हाँ, तो फ्रेगे और रसेल का मानना था कि अरस्तु नाम का मतलब है विवरणों का एक गुच्छा, जैसे सिकंदर का शिक्षक, प्लेटू का शिष्य वगैरह।
क्रिपके ने एक बड़ा सरल सा सवाल पूछा।
क्या?
उन्होंने कहा, मान लीजिए हमें बाद में पता चलता है कि अरे अरस्तु तो सिकंदर का शिक्षक था ही नहीं, कोई और था, तो क्या अरस्तु नाम का मतलब बदल जाएगा या वो व्यक्ति अरस्तु नहीं रहेगा?
नहीं, नाम तो वही रहेगा, व्यक्ति भी वही रहेगा।
बिल्कुल, क्रिपके ने यही कहा, नाम इस तरह काम नहीं करते कि वो विवरणों से बंधे हों।
तो फिर नाम किसी व्यक्ति या चीज से जुड़ते कैसे हैं? अगर विवरण से नहीं तो कैसे? क्रिपके ने क्या बताया? उन्होंने दिया संदर्भ का कारणता सिद्धांत, कैजुअल थ्योरी ऑफ रेफरेंस। उनका कहना था कि नाम किसी चीज को इसलिए नहीं पॉइंट करता कि वो चीज विवरणों से मेल खाती है, बल्कि एक तरह की ऐतिहासिक कारण श्रृंखला के जरिए।
ऐतिहासिक कारण श्रृंखला, ये क्या चीज है?
सोचिए, जैसे किसी बच्चे का नाम रखा जाता है पहली बार, है ना? उसे कहते हैं नामकरण या बैप्टिज्म, ये शुरुआती बिंदु है।
ठीक है,
फिर लोग उस नाम का इस्तेमाल करते हैं उसी बच्चे को बुलाने के लिए। एक व्यक्ति दूसरे से सीखता है और इरादा यही होता है कि उसी व्यक्ति को रेफर किया जाए जिसका नाम रखा गया था। ये श्रृंखला वक्ता से वक्ता तक चलती रहती है।
अच्छा, मतलब जैसे एक रिले रेस होती है, नामकरण से शुरू होकर वो नाम लोगों के बीच पास होता रहता है।
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। नाम का कनेक्शन व्यक्ति से इस चेन के जरिए बनता है, न कि इस आधार पर कि वो व्यक्ति किसी विवरण से फिट बैठता है या नहीं।
लेकिन इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती? मान लीजिए बीच में कोई गलत समझने लगे या नाम किसी और के लिए इस्तेमाल होने लगे।
ये बहुत अच्छा सवाल है। और हाँ, आलोचकों ने ये मुद्दा उठाया भी है। क्रिपके मानते थे कि इसमें वक्ता का इरादा महत्वपूर्ण है, उसी व्यक्ति को रेफर करने का इरादा जिससे नाम जुड़ा है। और ये सब एक समुदाय के भीतर होता है, गलतियां हो सकती हैं बेशक, लेकिन सिद्धांत का मूल ढांचा यही कारण श्रृंखला है।
ये वाकई सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। इसने तो अर्थ को दिमागी कॉन्सेप्ट से निकालकर दुनिया से जोड़ दिया।
सही कहा। और इसी से जुड़ा है उनका एक और बड़ा आइडिया, कठोर नामपद या रिजिड डिजिग्नेटर्स।
कठोर नामपद, ये क्या होता है?
ये क्रिपके का एक और धमाका था। उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिवाचक नाम होते हैं जैसे सॉल क्रिपके या मान लीजिए दिल्ली, और जो प्राकृतिक प्रकार के शब्द होते हैं जैसे पानी सोना,
हाँ,
ये सब कठोर नामपद हैं। इसका मतलब है कि ये हर संभव दुनिया में उसी व्यक्ति या उसी चीज को दर्शाते हैं जिसमें वो चीज मौजूद है।
एक मिनट, संभव दुनिया, ये क्या बला है?
हाँ, बला नहीं, ये एक दार्शनिक सोचने का तरीका है, एक टूल है। कल्पना कीजिए कि दुनिया कैसी हो सकती थी अगर इतिहास थोड़ा अलग होता।
अच्छा, जैसे?
जैसे मान लीजिए एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जहां मैं दार्शनिक ना होकर क्रिकेटर होता।
ठीक है, मान लिया।
क्रीप कहते हैं कि उस काल्पनिक दुनिया में भी मेरा नाम मान लीजिए अमित, उसी व्यक्ति यानी मुझे ही रेफर करेगा, लेकिन एक विवरण जैसे ज्ञान गोष्ठी का एक्सपर्ट शायद उस दुनिया में किसी और को रेफर करे या किसी को भी नहीं।
ओह, अच्छा, तो नाम व्यक्ति या चीज से चिपका रहता है चाहे हालात बदल जाएं।
बिल्कुल, नाम कठोर हैं, रिजिड हैं, वो हर काल्पनिक स्थिति में उसी चीज से जुड़े रहते हैं, जबकि विवरण जैसे भारत का प्रधानमंत्री या सबसे ऊंचा पहाड़ अलग अलग संभव दुनियाओं में अलग अलग चीजों को रेफर कर सकते हैं।
समझ गए, नाम पहचान से जुड़े हैं, गुणों से नहीं, और इसी तर्क से वो पहुंचे आवश्यक पश्चानुभाविक सत्य तक, नेसेसरी ए पोस्टेरियोरी ट्रूथ्स।
एकदम सही। और ये विचार तो मतलब दर्शन में भूचाल ले आया इसने, कांट के समय से चली आ रही एक बहुत गहरी मान्यता को तोड़ दिया।
कौन सी मान्यता?
पहले ये माना जाता था कि जो सत्य आवश्यक हैं, नेसेसरी हैं, यानी हर हाल में सच, हर संभव दुनिया में सच, वो आनुभविक ही होंगे, ए प्रायोरी। मतलब उन्हें जानने के लिए दुनिया के अनुभव की जरूरत नहीं, तर्क से ही पता चल जाते हैं, जैसे 2+2=4।
हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है।
और जो सत्य पश्चानुभविक हैं, ए पोस्टीरियरी, यानी अनुभव या वैज्ञानिक खोज से पता चलते हैं, वो आकस्मिक होंगे, कंटिंजेंट, यानी वो वैसे न भी हो सकते थे। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, ये सच है, पर हो सकता था न भी हो।
ठीक है, तो ये दो अलग अलग खाने थे, आवश्यक आनुभविक और आकस्मिक पश्चानुभविक।
हाँ, और क्रिप्के ने कहा ये वर्गीकरण अधूरा है। उन्होंने दिखाया कि कुछ सत्य ऐसे हैं जो आवश्यक भी हैं और पश्चानुभविक भी।
अच्छा, ये कैसे, उदाहरण क्या है?
उनका क्लासिक उदाहरण है पानी H2O है। अब ये बात हमें कैसे पता चली?
वैज्ञानिक खोज से, एक्सपेरिमेंट से,
बिल्कुल
लैब में जाकर पता करना पड़ा।
तो ये पश्चानुभविक हुआ, अनुभव से मिला।
हाँ,
लेकिन क्रिप्के ने कहा एक बार जब हमें ये पता चल गया तो ये पहचान आवश्यक है, नेसेसरी है। कोई भी चीज जो H2O नहीं है वो पानी हो ही नहीं सकती, किसी भी संभव दुनिया में नहीं। पानी होने का सार ही है H2O होना।
अरे वाह, मतलब विज्ञान की खोज हमें ऐसी सच्चाई बता सकती है जो सिर्फ आज सच नहीं बल्कि हमेशा के लिए हर हाल में सच है।
एग्जैक्टली, ये खोज हुई अनुभव से, पर सत्य अपने आप में आवश्यक है। एक क्रिप्के का मास्टर स्ट्रोक था।
ये तो ज्ञान और वास्तविकता के रिश्ते पर ही एक नई रोशनी डालता है। इन विचारों का असर कहाँ कहाँ हुआ फिर?
असर तो बहुत गहरा और चौतरफा हुआ। भाषा दर्शन, मेटाफिजिक्स, मन का दर्शन, तर्कशास्त्र, इन सब में जैसे एक नई ऊर्जा आ गई। अक्सर कहा जाता है कि क्रिप्के ने मेटाफिजिक्स को एनालिटिकल फिलॉसफी में दोबारा इज्जत दिलाई, उसे केंद्र में ला दिया। मन शरीर की जो समस्या है उस पर उनके तर्क, जो कठोर नामपदों पर ही आधारित थे, आज भी फिलॉसफी ऑफ माइंड में बहस का एक अहम हिस्सा है। और मॉडल लॉजिक में उनका काम तो खैर मील का पत्थर बन गया।
उनके कौन से मुख्य काम है जिनमें ये सब विचार मिलते हैं?
सबसे महत्वपूर्ण है उनकी किताब नेमिंग एंड नेसेसिटी, नामकरण और आवश्यकता। ये 1980 में छपी, पर असल में ये 1970 में प्रिंसटन में दिए गए उनके 3 लेक्चर्स थे।
अच्छा, लेक्चर से किताब बनी।
हाँ, और इसे 20वीं सदी के दूसरे हिस्से का शायद सबसे प्रभावशाली दार्शनिक काम माना जाता है। इसी में उन्होंने विवरणात्मक सिद्धांत को तोड़ा, कारणता सिद्धांत दिया और कठोर नामपद व आवश्यक पश्चानुभविक सत्य की बात की।
और उनकी एक और किताब भी चर्चित है, विटकिंस्टाइन ऑन रूल्स एंड प्राइवेट लैंग्वेज, विटकिंस्टाइन पर।
हाँ, वो 1982 में आई, वो भी लेक्चर्स पर ही आधारित थी। इसमें उन्होंने लुडविग विटकिंस्टाइन के बाद के दर्शन की एक बहुत ही उत्तेजक ओरिजिनल व्याख्या पेश की।
इसमें क्या खास था?
इसी में उन्होंने अर्थ को लेकर वो मशहूर संशयवादी पहली खड़ी की, जिसे क्रिप्किंस्टाइन पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई ऐसा तथ्य है जो ये तय कर सके कि किसी शब्द जैसे जोड़ प्लस का मतलब क्या है, खासकर जब हम उसे पहली बार किसी नई संख्या पर लागू करते हैं।
ये तो गहरा सवाल है।
हाँ, और उनका तर्क ये था कि शायद अर्थ किसी व्यक्ति के दिमाग की स्थिति में नहीं बल्कि समुदाय की जो साझी प्रथाएं होती हैं उनमें छिपा होता है।
तो क्रिप्के ने सिर्फ भाषा और वास्तविकता ही नहीं बल्कि अर्थ कैसे बनता है इस पर भी जबरदस्त काम किया। अगर उनकी तुलना क्विन जैसे समकालीनों से करें तो क्या फर्क दिखता है?
क्विन, जैसा हमने पहले कहा, वो आवश्यकता या नेसेसिटी की धारणा को लेकर काफी शकी थे। वो मानते थे कि ये दुनिया की सच्चाई नहीं, बस हमारे बोलने का तरीका है।
हाँ,
क्रिप्के ने ठीक उल्टा किया। उन्होंने मेटाफिजिकल आवश्यकता यानी दुनिया में वाकई में मौजूद जरूरत को दार्शनिक चर्चा के केंद्र में वापस ला दिया। उन्होंने कहा कि हम संभावना और आवश्यकता के बारे में सार्थक रूप से सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं।
और विटगेंस्टाइन से उनकी तुलना,
वो तो एक अलग ही कहानी है। क्रिप्के की विटगेंस्टाइन की व्याख्या, जिसे क्रिप्केनस्टाइन कहा गया, उसने नियम पालन, रूल फॉलोइंग और अर्थ पर बहुत बहस छेड़ी। हालांकि कई विटगेंस्टाइन के जानकार मानते हैं कि क्रिप्के ने विटगेंस्टाइन को ठीक से नहीं समझा। ये एक अलग लंबी चर्चा है।
समझ गई, तो कुल मिलाकर क्रिप्के की विरासत क्या है, आज वो कितने प्रासंगिक है?
उनकी विरासत बहुत बड़ी है। उन्होंने विश्लेषणात्मक दर्शन का फोकस बदला, भाषा के विश्लेषण से हटकर उसे वापस वास्तविकता के जो बुनियादी सवाल हैं उनकी तरफ मुड़ा। कई बार कहा जाता है कि इन मुद्दों पर दार्शनिकों को अब क्रिप्के से पहले और क्रिप्के के बाद के दौर में देखा जाता है।
इतना बड़ा प्रभाव?
हाँ, वाकई उनके कॉन्सेप्ट्स, कठोर नामपद, आवश्यक पश्चानुभविक सत्य, कारणता सिद्धांत, ये सब अब भाषा दर्शन या मेटाफिजिक्स के किसी भी इंट्रोडक्शन कोर्स का हिस्सा है।
और क्रिप्किंस्टाइन वाली बहस,
उसने अर्थ, नियम और संशयवाद पर एक पूरा सब फील्ड बना दिया है। उनके विचार आज भी चेतना, पहचान, AI, कॉग्निटिव साइंस, इन सब में जो बहसें चल रही हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और आपने बताया था कि उनके मॉडल लॉजिक वाले काम का प्रैक्टिकल यूज भी है।
बिल्कुल है, कंप्यूटर साइंटिस्ट्स AI में, डेटाबेस में और प्रोग्राम सही काम कर रहे हैं या नहीं ये जांचने में क्रिप्के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें 2001 में रॉल्फ शॉक प्राइज भी मिला था, जिसे तर्क और दर्शन का नोबल जैसा माना जाता है।
उन्होंने किन संस्थानों में काम किया?
अपने करियर में वो हार्वर्ड, प्रिंसटन, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी और बाद में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क यानी CUNY ग्रेजुएट सेंटर जैसे बड़े संस्थानों से जुड़े रहे।
क्या उनके कुछ कोट्स हैं जिनसे उनके विचार समझ में आए?
हाँ, कुछ हैं, जैसे कठोर नाम पदों पर। वो कहते हैं मोटे तौर पर कि किसी चीज को कठोर नाम पद कहें यदि हर संभव दुनिया में वह उसी वस्तु को निर्दिष्ट करता है। ये नेमिंग एंड नेसेसिटी से है, उनके सिद्धांत का मूल।
पानी और H2O वाला भी अहम होगा।
हाँ बिल्कुल, यदि हमने खोज लिया है कि पानी H2O है तो पानी और H2O की पहचान एक आवश्यक पहचान है। ये उनके नेसेसरी एपोस्टीरियराई सत्य वाले तर्क को दिखाता है।
और नामों के रेफरेंस पर उनका नजरिया, सरल शब्दों में?
सरल शब्दों में कहें तो संदर्भ इस बात से तय नहीं होता कि बोलने वाला उस चीज के बारे में क्या सोचता है, बल्कि उस चीज से जुड़ी हुई जो संचार की श्रृंखला है उससे तय होता है। ये उनके कारणता सिद्धांत का सार है।
उनके बारे में कुछ और मजेदार या कम जानी मानी बातें हैं?
हाँ हैं, तो एक तो ये कि वो लिखने से बहुत बचते थे।
अच्छा, इतने बड़े विचारक और लिखने से परहेज?
हाँ, उनकी दो सबसे मशहूर किताबें, जैसा मैंने कहा, उनके लेक्चर्स के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। उन्हें छापने के लिए भी उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाया गया था। कहते हैं उनके पास ट्रंक भर के अप्रकाशित नोट्स और लेक्चर रिकॉर्डिंग्स थीं।
ये तो अजीब बात है, मतलब इतने जरूरी विचार दुनिया तक पहुंचते पहुंचते रह सकते थे।
हाँ, हो सकता था। और दूसरी बात, उनकी पढ़ाने की शैली बहुत इनफॉर्मल, बातचीत वाली थी। वो अक्सर बड़े सरल रोजमर्रा के उदाहरण लेते थे, यूनिकॉर्न, गोडेल या मेज, और उनसे गहरे दार्शनिक पॉइंट समझा देते थे।
यानी मुश्किल बातें आसान तरीके से समझाते थे।
बिल्कुल। और उनके 1970 के प्रिंसटन लेक्चर्स के बारे में कहा जाता है कि वो बिना किसी नोट्स के दिए गए थे और इतने प्रभावशाली थे कि लोग दशकों बाद भी उन लेक्चर्स के खास पलों को याद करते थे।
जाहिर है, इतने क्रांतिकारी विचार थे तो आलोचनाएं भी हुई होंगी, विवाद भी रहे होंगे।
हाँ जरूर, सबसे ज्यादा बहस तो उनकी क्रिप्केनस्टाइन व्याख्या पर हुई। जैसा हमने कहा, कई बड़े विटगेनस्टाइन स्कॉलर्स का मानना है कि क्रिप्के ने विटगेनस्टाइन को गलत समझा, उन पर एक ऐसा संशयवाद थोप दिया जिसे विटगेनस्टाइन खुद काटना चाह रहे थे, न कि उसे बढ़ावा देना।
और उनके कारणता सिद्धांत की भी आलोचना हुई। आपने पहले इशारा किया था कि चेन में गड़बड़ हो सकती है।
हाँ सही, आलोचकों ने कहा कि यह कारण श्रृंखला की बात थोड़ी गोलमोल है, अस्पष्ट है। श्रृंखला की सही कड़ी किसे मानेंगे? अगर नाम का मतलब समय के साथ धीरे धीरे बदल जाए तो क्या होगा, जिसे रेफरेंस ड्रिफ्ट कहते हैं? सिद्धांत में दम है, पर ये सवाल अपनी जगह हैं।
मन शरीर समस्या पर उनके तर्क का क्या हुआ?
देखिए, मन के दर्शन में भौतिकवाद, फिजिकलिज्म के खिलाफ उनका तर्क बहुत असरदार रहा है, लेकिन उतना ही विवादित भी। बहुत से दार्शनिक उनके मॉडल तर्क से बचने के रास्ते ढूंढते रहे हैं ताकि वो मन और मस्तिष्क की पहचान का बचाव कर सकें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्रिप्के संभव दुनियाओं के बारे में हमारी जो सहज समझ होती है, इंट्यूशन, उस पर कुछ ज्यादा ही निर्भर करते हैं, और शायद ये इंट्यूशन उतने भरोसेमंद ना हो।
और प्राकृतिक प्रकारों के बारे में उनके विचारों की आलोचना, जैसे पानी, सोना वगैरह?
हाँ, उनका मानना था कि प्राकृतिक प्रकारों का एक सार होता है, एसेंस, जैसे पानी का H2O होना। इसे एसेंशियलिज्म कहते हैं। इसकी भी आलोचना हुई है, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के संदर्भ में।
कैसे?
आलोचक कहते हैं कि वैज्ञानिक कैटेगरी, जैसे कि प्रजातियां, स्पीशीज, शायद उतनी कठोर और सार आधारित नहीं होती जितना क्रिप्के सोचते थे। वो ज्यादा लचीली हो सकती हैं, समय के साथ बदल सकती हैं।
तो ये थे सॉल क्रिप्के, एक वाकई असाधारण दिमाग जिन्होंने हमें भाषा, तर्क और असलियत को देखने का एक नया नजरिया दिया। उनका काम दर्शन के कई अंधेरे कोनों में रोशनी ले आया।
निश्चित रूप से। और क्रिप्के की कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे भाषा का बारीकी से विश्लेषण और कठोर तर्क हमें दुनिया की बनावट के बारे में गहरी सच्चाइयों के करीब ले जा सकता है।
और इसी नोट पर हम आज की चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ रोकते हैं। क्रिप्के ने संभव दुनियाओं के बारे में हमारी कल्पना और सहज ज्ञान का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, पर क्या ये सहज ज्ञान वाकई वास्तविकता की किसी गहरी परत को दिखाता है, या ये सिर्फ हमारे सोचने का, हमारी भाषा का एक तरीका भर है? सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, इस पर सोचते रहिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।